स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना ना भूलें नई धारा रेडियो पर। तीतरा मेरी माँ की ADC थी। उनके साथ साथ साये की तरह चलती और उनके हर काम में हाथ बटाती। बड़ी प्यारी गांव की बेटी थी और कोई काम करने में उसे हिचक या लाज नहीं होती। अपने मैके आरा से जैसे ही मेरी माँ की गाड़ी हम बच्चों के दल बल के साथ सूर्यपुरा गढ़ के फाटक पर रुकती, पूरा पर्दा किया जाता और तब वे धीरे धीरे अंदर घुसती। पिताजी अपने कारिंदों से मिलने जुलने, काम समझने समझाने बाहर ही रह जाते और मुझे वे फाटक पर भेजती कि किसी चपरासी से कह दूं कि वह दौड़कर तेतरा को बुला लाए। हमारे गढ़ से सटे हुए ही तेतरा का घर था। वह गांव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की बेटी थी। उसके पिता की आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। खबर पाते ही वह झट दौड़ती चली आती और माँ के साथ सब सामान मोटर से उतार कर अंदर अम्मा के आंगन तक पहुँचाकर उन्हें संभाल कर रखने और हमें नहला धुला कर कपड़े बदल देने का सारा काम झट कर देती। तब तक अम्मा की और परिचारिकाएं उनके आगमन की जैसे जैसे सूचना मिलती झट पहुँच जाती। फिर बाकायदा प्रतिदिन का खट राग शुरू हो जाता। मेरे पिताजी खाने के मामले में समय के बड़े पाबंद थे और पहले अम्मा तेतरा से उनका खाना बनवाने का पूरा सामान मंगवाती और अपने चौके में चूल्हा जलवा देती। जब तक माँ जिंदा थीं, उन्हीं के हाथ का बनाया भोजन पिताजी बड़े चाव से खाते रहे। इसलिए उनका खाना तो वे खुद बनाती, मगर तेतरा अमावस के आने तक उन्हें ऊपर से सहायता देती रहती। अमावस गांव की एक दूसरी ब्राह्मणी लड़की थी, तेतरा से बड़ी, जो माँ के चौके का भार संभाले रहती। इसी बीच तेतरा बच्चों के साथ बैठकर हमें किस्से कहानी भी सुनाती और एक एक गिलास दूध भी गले से अंदर पहुंचवा देती। तेतरा अभी किशोरी है, मगर फुर्ती में बड़ों के कान काटती। पतला छरहरा बदन, गोरा शरीर, शरीर की चौड़ी हड्डियां, सुंदर नाक नक्शा। गांव की बेटी होने के नाते साड़ी और ब्लाउज ही पहनती। उसके ज्यादातर कपड़े अम्मा के दिए ही होते। सिलाई पुराई और तरह तरह के खाने के व्यंजन बनाना अम्मा की बहुत बड़ी हॉबी थी। तेतरा गांव भर की समवयस्क ब्राह्मण कुमारियों को जुटा देती। दरी बिछ जाती और वे तरह तरह के तोता मैना, गुड्डा गुड़िया, बटुआ आदि बनाती रहती। झुनझुन दीदी की शादी में ससुराल जाने वाली पिटारियों को भरने के लिए। दीदी का विवाह तो अभी बहुत दूर था, मगर माँ इस सिद्धांत की कायल थीं कि बेटी जन्मी नहीं कि उसके विवाह की तैयारी उसी दिन से प्रारंभ हो जाए। कपड़े गहने बनवाना, हर अच्छी चीज को बचा बचा कर रखना माँ का काम और बेटी के बाप के जिम्मे काम रहता कि पैसे पैसे बचा कर बेटी की शादी और दहेज के लिए जमा करना। तीतरा, बगेसरा, राजमुनि, अमावस, वंशी इत्यादि गांव की दर्जनों ब्राह्मणी छोरियों को माँ और छोटी माँ इसी काम में भिड़ा देती। माँ को खुद कढ़ाई बुनाई और कुरुस कांटी के काम का बहुत शौक था, इसीलिए उन्हें खुद अपने हाथों सिखाती और फूल कसीदे बनवाती। खिलौनों तथा बटुओं पर मोती पोत के काम भी बताती और उनसे करवाती। उन दिनों गांव का वातावरण आपसी सद्भाव तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत था। ग्राम पंचायत के चुनावों ने गांव की संस्कृति को आज की तरह विकृत नहीं कर दिया था। फिर आज और बीते हुए कल में यह भी फर्क था कि उन दिनों हमारी ज़रूरतें और मांगें भी बहुत कम थीं। माँ महीने में 15 दिन तो व्रत ही रह जाती थी। एकादशी, प्रदोष, वट सावित्री, सोमवती, अमावस्या, कार्तिक स्नान आदि का सिलसिला अन्य अनेक पर्वों के साथ साथ बराबर चलता रहता और तेतरा उनके पूजा के सामान इत्यादि भोरे भोरे नहा धोकर जुटाती रहती। जब से बहनों की शादी के सगुन उठते, माँ के इशारे पर तेतरा गांव की अन्य बेटियों के साथ कभी मंडप के ये गीत गाती, अरैल वन के करैल, वृंदावन के बांस हो राम, और बगिया में फुलेला बैलिया, त बगिया सुहावन हो, तथा हर शुभ मुहूर्त और त्योहार पर मंगल गान। कभी कभी बुजुर्गों की, खासकर छोटे बाबूजी की नजर बचाकर बड़े जानदार ये झूमर गाकर सुनने वालों को झकझोर देती। उसमें उमंग में आकर रुखिया भी घुंघरू पहनकर हाव भाव दिखाती, गाती और नाच उठती। गांव की अन्य युवतियां भी खूब भाग लेती। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर नजर लागी। एक बार स्कूल से लौटते हुए मैंने देखा कि मेरे एक चाचा शादी कर अपनी नई बहू को लिए ब्रह्म स्थान पर मोटर लगाए बाहर खड़े हैं। मैं झट वहां दौड़ गया तो पता चला कि अभी गढ़ से गीत गवनियों की टोली बहू के स्वागत में गीत गाती तथा ब्रह्म बाबा के पूजन की सामग्री लिए पहुंची नहीं है। गांव की रीति के अनुसार पहले बड़का पोखरा पर ब्रह्म बाबा की पूजा करके ही नई नवेली बहू अपने घर में बाजे के साथ परिछावन के लिए जाती है। उसी टोली की प्रतीक्षा है। तब तक एक तेज दोधारी तलवार की अनोखी चमक की तरह एक कोने से गाने की कड़ी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि की चोट इतनी गहरी थी कि मेरे चाचा मोटर से उतरकर बोल पड़े, तो यह रही एक आवाज। मैंने मन ही मन कहा, यह तो तेतरा की ही कठोर झनकार है, दूसरी किसी की आवाज में यौवन का यह विलास नहीं दिखता। और बात सही ही निकली। पश्चिम से तेतरा अपने गीतों में ही गूंजती हुई एक हाथ में लोटे का पानी तथा दूसरे में पूजा अर्चना की सामग्री से भरी थाली लिए अन्य सजी सवरी सुहागिनों के साथ गाती चली आ रही है। हसत खेलत मुर बाबू गईले, मन बेदिल काहे अइले, चित बेदिल काहे अइले। अंत में फिर जब बहू को डोली से उतार कर घर के भीतर आंगन में ले जाने को हुआ, तब आनंद और उमंग में उमड़ पड़ी। धन धन भाग कवन लाल, बेटा पतोह घर आयो। राणा भैया की शादी में हल्दी की रात तो उसने वह धमाचौकड़ी मचाई कि कुछ न पूछिए। पहले तो सबके साथ बैठकर गीत गाया, केई मोर हरदी उपरा जेली कई, बेसा हले हरदी सुहावन ए, और कोई रिनी तू बड़ी रानी रे, कहिया के हरदी सचारे वो आजू रे। फिर दौड़कर सभी बहनोइयों के गालों में खूब हल्दी मल्दी और पीठ पर हल्दी और दही की छाप भी। झुनझुन दीदी के दूल्हा पर तो उसकी विशेष कृपा रही। मध्य प्रदेश के सीधे सादे निवासी और ICS के एक ऊंचे अफसर, उन्हें बिहारी रीति रिवाजों से क्या मतलब, उन पर उसने कसकर चढ़ाई कर दी। माँ के लाख मना करने पर भी वह शोख लड़की नहीं मानी और उनके मुंह में हल्दी पोत ही दी। उनका सुनहले फ्रेम का चश्मा उसी गुत्थम गुत्थी में जमीन पर आ गिरा। यह तो माँ की नजर उस पर पड़ गई, वरना वह चूर चूर हो जाता। खैर, उस रस्म के बाद मेरे बहनोई इतने डर गए कि मेरे गांव सूर्यपुरा वे फिर किसी भी विवाह में नहीं आए, केवल बच्चों के साथ झुनझुन दीदी को भेज देते। झुनझुन दीदी की शादी में तो वह माँ के हर काम में हाथ बटाती रहती। कभी मंडप की रस्मों की चीजें जुटाती तो कभी चौके में दौड़कर पिताजी के खाने की सामग्री जुटाती। उनका परहेजी खाना भी कम झंझट का नहीं होता और कभी गढ़ में ठहरी हुई महिलाओं की खातिरदारी में लग जाती। और जब कोई भी काम नहीं रहता तो माँ के मन का सबसे सुंदर काम करती, कुछ महिलाओं को जुटाकर ढोलक लेकर विवाह के ये गीत गाने लगती। चारू चौखग के पोखरा हो बाबा, चुनवे चुनवटल चारू घाट ए, और कहवा से आवे घीव गागर अरुगुर गागर ए, कहवा से आवले कवन दुल्हा केसर गम केला ए। विवाह का घर सोना कैसे लगे, मंगल ध्वनि तो बराबर उठती ही रहनी चाहिए। कमाल की ऊर्जा थी उसमें और इकहरे बदन में यौवन की अदम्य उल्लास भरी अनुपम स्फूर्ति। आधी शती बीती एक घटना मुझे आज भी खूब याद है। झुनझुन दीदी का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। बारात बहुत छोटी थी। मध्य प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोगों से बहुत सीधे होते हैं, उन्हें कोई लाम काफ नहीं। उन्होंने महफिल में बैठने से इनकार किया और स्कूल हॉल में मल्लिक लोगों का भजन गायन सुनना ज्यादा पसंद किया। मगर बेटी के विवाह की सबसे बड़ी वेदना भरी समाप्ति बेटी की विदाई होती है। उस अवसर के लोकगीत बिंधे हुए हृदय पर नमक छिड़कने का काम कर देते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन को पीढ़ा पर बैठाकर अपनी संस्कृत पुस्तिका से पंडित राम तवक्कल तिवारी बड़े करुण स्वर में संस्कृत में ही सस्वर कुछ श्लोक सुना रहे हैं। बाबूजी की आंखें सजल हो उठती हैं, पीछे खड़े मुझसे पूछ बैठते हैं, समझ रहे हो तिवारी जी क्या पढ़ रहे हैं? नहीं। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य खड़ा कर दिया है इन श्लोकों ने। बेटी पालकी में बैठने से पहले सबसे विदा ले अब अपनी गाय की छोटी बछिया तथा मृग छौनी से पुचकार पुचकार कर पूछ रही है, क्या तुम मुझे कभी याद करोगी? फिर अपने हाथ से रोपे हुए कदली के पेड़ से लिपट कर फिर वही बात पूछती है, इत्यादि इत्यादि। मेरी भी आंखें लोर से भर आई। उधर तेतरा ने अपनी टोली लिए वेदना की स्वर लहरियों को अपने कातर कंठों से उस आंगन में ऐसा लहरा दिया कि बारातियों को भी रुला दिया। आखिर बेटी का बाप तो वहां हर कोई था। तेतरा ने कांपते हुए स्वर में प्रारंभ किया, काहे के दुधवा पियव्वले बाबा, काहे के कईल दुलारे, फिर केकरा ही रोवले गंगा बड़ी अली, केकरा ही रोवले अनोरे। अंत में यह गीत जो उसने गाया तो सबकी जेबों से रुमाल निकल आए। उनके अखियां से लोरवा गिरत हुई है ना, उनके गज मोती अचरा भिजत हुई है ना, फूल परिजतवा झरत हुई है ना, लड़कियां के नेहिया टूटत हुई है ना। तेतरा की शादी शायद किसी अच्छी जगह नहीं हुई। मुझे इसका पूरा पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि सन 1938 में मैट्रिक पास करते ही मैं शहर कॉलेज में चला गया और छुट्टियों में ही गांव आता। कभी कभी वह ससुराल से आई होती तो माँ से मिलने अवश्य आती। मैंने देखा उसके चेहरे पर ना वह पहले की स्फुरना है, न शरीर में वह बिजली की सी चमक। वह मुरझाई, बहुत थकी सी लगी। वैसे वह प्रयास यही करती कि वह स्वस्थ और प्रसन्न दिखे, परंतु जो है ही नहीं वह कैसे चमके, कैसे महके। अपने परिजनों से मिलकर फिर वह ससुराल चली जाती, उसका कोई अता पता नहीं मिलता। देहातों में लोग आज भी यही सोचते हैं, बेटी पराई होती है, उसका सर्वस्व उसका पति ही है, उसकी ससुराल ही है। मैके से जितनी जल्दी धागे टूट जाएं उतना ही शुभ है। इसी शुभ के चलते कितनी बेटियों का आज भी अशुभ हो रहा है। तीतरा का भी एक दिन वही हुआ। विवाह के कुछ ही साल बाद असमय ही किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो चल बसी। जब मां से सुना तो मन सन हो गया। आज जब विदेश में तेतरा की तरह ऊर्जा से भरी किसी युवती को सार्थक जीवन जीते हुए देखता हूं तो मन ग्लानी से भर जाता है। भारत जैसे विशाल देश में गांवों की ऊर्जा तथा तेज से भरी हुई असंख्य युवतियों का तेतरा सदृश असमय ही निरर्थक अंत होता रहता है, परंतु कहां किसी की नजर उस ओर जाती है। अपनी बेटियों की ऊर्जा और प्रतिभा का जितना निरादर इस देश में होता है उतना शायद अन्य देशों में नहीं होता होगा।
इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।